महत्वपूर्ण नाम और शब्द शब्दावली। इस सूची में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों की जानकारी इस पुस्तक में विस्तार से बताई गई नहीं है। पुस्तक में जो घट शब्द हैं उनका इस शब्दावली में समावेश किया गया है। अब्राहम, जो लोग इसराइली या तो यहूदी लोग के तौर पर जाने जाएंगे उनके पिता के तौर पर चुना गया परमेश्वर का सेवक। प्रेरितों के काम, नए नियम में शुरुआत के मसीही लोगों का इतिहास बताने वाला पुस्तक। आदम और हव्वा, परमेश्वर ने बनाए हुए प्रथम दो मनुष्य, पुरुष और स्त्री। दूत, परमेश्वर की और यीशु में जो विश्वासी है उनकी सेवा करने वाले अलौकिक व्यक्ति। मूल इब्रानी और यूनानी भाषा में बताए गए दूत शब्द का अनुवाद है संदेशवाहक, इसलिए दूत शब्द उसके कार्य का विवरण बताते हैं। यह शब्द परमेश्वर के राज्य में जो लोग हैं उनको संदेश पहुंचाने के कार्य को दर्शाता है। ज्यादा जानकारी के लिए शब्दावली के अलौकिक बातों के बारे में उपयोग में लिए गए शब्दों का सारांश देखो। प्रेरित, यूनानी शब्द का अर्थ है भेजा गया व्यक्ति। नए नियम में विविध प्रकार के प्रेरित हैं। स्वर्गारोहण, पुनरुत्थान पाने के बाद यीशु स्वर्ग में चढ़ गए वो घटना। अश्शूरी लोग, उत्तरी मेसोपोटेमिया में इसराइल के प्राचीन शत्रु। बाबेल, दक्षिण मेसोपोटेमिया का वर्तमान समय का इराक, प्राचीन बाबेल नगर। बाबेली, दक्षिण मेसोपोटेमिया में रहने वाले इसराइल के प्राचीन शत्रु। विश्वासी, सुसमाचार पर विश्वास करने वाला और अंगीकार करने वाला व्यक्ति। बाइबिल, 66 प्राचीन पुस्तकों का संग्रह। परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रेरणा देकर इन पवित्र पुस्तकों को लिखा है। प्रथम 39 पुस्तक पुराना नियम और उसके बाद के 27 पुस्तक नया नियम से जाने जाते हैं। ख्रिस्त, अभिषिक्त व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है, जिसे यीशु को दिए गए नाम मसीह से भी जाना जाता है। वाचा, दो व्यक्तियों के साथ की गई सहमति। बाइबिल में परमेश्वर ने मनुष्यों को वचन और आशीष देकर वाचा बांधी है। वाचा में शर्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्रूस, यीशु को मार डालने की रीत। रोमी क्रूस एक लकड़े को सीधा खड़ा करके उस पर दूसरे एक लकड़े को आड़ा बांधकर बनाया जाता था। उस पर गुनहगारों को कीले मारकर टांग दिया जाता था। नए नियम में क्रूस शब्द, जहां पापों की माफी प्राप्त हुई और सुसमाचार पर विश्वास करने वाले लोगों को उद्धार की सुरक्षा प्राप्त हुई, उस स्थान को दर्शाता है। दाऊद, इसराइल का दूसरा राजा, जिसे परमेश्वर ने अनंतकालिक राजवंश देने का वचन दिया था। उसकी पीढ़ी में से मसीह आए थे। दुष्टता, बुराई और पाप से जुड़ा हुआ शब्द। वैसे यह शब्द दुष्ट विचारों और वर्तन को भी बताता है। शैतान, शैतान सर्प का दूसरा नाम है। ज्यादा जानकारी के लिए अलौकिक बातों के बारे में उपयोग में लिए जाने वाले शब्दों का सारांश देखो। चेला, यह एक संज्ञा है और जो कोई व्यक्ति उसके जीवन में यीशु का अनुसरण करता है और यीशु की शिक्षा का अनुसरण करता है उस व्यक्ति को दर्शाता है। किसी को चेला बनाने के द्वारा उस व्यक्ति को यीशु का अनुसरण करना सिखाया जाता है। सुसमाचार प्रचार, विविध रीति से शुभ संदेश का प्रसार करने का कार्य। निर्गमन, एक, बाइबिल में दिया गया दूसरा पुस्तक। दो, इसराइल देश में मिस्र की गुलामी में से छुटकारा पाया था उस घटना को दर्शाने वाला शब्द। दुष्ट, परमेश्वर जिसे नैतिक रूप से बुरा, नुकसान करने वाला और खुद के लिए और परमेश्वर के सृजन के लिए ठोकर दिलाने वाला कहते हैं, ऐसा व्यक्ति। विश्वास, भरोसा करने वाला विश्वास, कोई व्यक्ति या वस्तु पर। पतन, अदन वाटिका में आदम और हव्वा ने किए हुए पाप का परिणाम। माफी पापों की, जब परमेश्वर कोई व्यक्ति को उसके पापों की और परमेश्वर के विरुद्ध किए हुए कार्यों की क्षमा करते हैं तो उसे माफी कहा जाता है। जब परमेश्वर माफ करते हैं तब उसके दंड को भी दूर किया जाता है। उसके साथ जुड़े हुए विचार है अनुग्रह, दया और उद्धार। अदन वाटिका, परमेश्वर ने बनाए मूल जगत में जहां आदम और हव्वा रहते थे वो स्थान। परमेश्वर भी अदन वाटिका में उपस्थित थे। उत्पत्ति, बाइबिल का प्रथम पुस्तक। अन्य जाति, जो कोई व्यक्ति मूल इसराइल का भाग नहीं यानी कि गैर यहूदी। परमेश्वर। बाइबिल में जहां यह शब्द एक वचन में और कैपिटल अक्षर में लिखा गया है वहां सबका सृजन करने वाले अद्वितीय और जिसके साथ किसी की तुलना नहीं कर सकते ऐसा अलौकिक व्यक्ति जो मनुष्य से प्रेम रखता है। ईश्वरत्व। त्रिएकता अद्वितीय परमेश्वर में जो तीन व्यक्ति है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। सुसमाचार यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होने वाला उद्धार का संदेश। अनुग्रह जब परमेश्वर हमारी योग्यता के बगैर हमें कोई आशीष देते हैं तो वो अनुग्रह या तो कृपा है यानी परमेश्वर की भलाई। महान आदेश यीशु ने उनके चेलों को सब जातियों के लोगों को सुसमाचार देकर चेला बनाने का जो महत्वपूर्ण कार्य दिया था उसे महान आदेश कहते हैं। इब्रानी एक इसराइली व्यक्ति के लिए उपयोग में लिया जाने वाला शब्द। दो पुराना नियम जो मूल भाषा में लिखा गया था वो भाषा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का तत्व रखने वाला परमेश्वर का आत्मा। इसहाक सारा से जन्मा हुआ अब्राहम का पुत्र। इसराइल एक अब्राहम के पोते का नया नाम। दो पुराने नियम में अब्राहम और सारा के द्वारा जिस देश की शुरुआत हुई थी वो देश इसराइली। अब्राहम की पीढ़ी के लोग इसराइल देश के लोग। याकूब इसहाक का पुत्र इस प्रकार से वो अब्राहम का पोता था उसका नाम बदलकर इसराइल रखा गया था। यीशु कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मा हुआ परमेश्वर का पुत्र पर वो संपूर्ण परमेश्वर है। पाप से मानव जात का उद्धार करने के लिए परमेश्वर खुद यीशु बनकर मनुष्य रूप में आए। यहूदी इसराइली लोगों का दूसरा नाम। अब्राहम के वंशज प्राचीन समय में बंधुआई में भेजे गए इसराइल के दो कुलों को अन्य जातियों ने दिया गया नाम। परमेश्वर का मसीह का यीशु का राज्य मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर विश्वासियों के साथ परमेश्वर का राज्य। नया नियम बताता है कि इस राज्य की शुरुआत हो चुकी है पर इसकी अंतिम परिपूर्णता का इंतजार हो रहा है। दया जब परमेश्वर हम पर से उनके न्याय को दूर करते हैं। मसीह अभिषिक्त व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला इब्रानी भाषा का शब्द। यह शब्द दाऊद के वंश से आने वाले और लोगों को उनके पापों से छुड़ाकर उद्धार देने वाले अंतिम राजा को दर्शाता है। बाइबिल की बात में यीशु को मसीह कहा जाता है। यह इब्रानी भाषा का यूनानी शब्द है ख्रिस्त। इसलिए यीशु ख्रिस्त यानी कि यीशु मसीह शब्द प्रयोग किया जाता है। मूसा मिस्र में इसराइली गुलामी के समय जन्मा एक इसराइली व्यक्ति। परमेश्वर ने इसराइल को गुलामी में से छुड़ाने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए उसको चुना था। सिनै पर्वत इस पर्वत पर परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाने के लिए मूसा को बुलाहट दी थी और उसके बाद इसराइल को 10 आज्ञाएं दी थी। नया नियम पुराने नियम के बाद की 27 पुस्तकें उसमें यीशु के जीवन और सेवा का शुरुआत के मसीही इतिहास का और प्रथम सदी में मसीहियत के प्रसार के इतिहास का समावेश किया गया है। नूह जल प्रलय के समय जिस इंसान को परमेश्वर ने धर्मी गिना था वो व्यक्ति। परमेश्वर ने नूह को उसका उसके परिवार का और पशु पक्षियों का बचाव करने के लिए एक बड़ा जहाज बनाने की आज्ञा दी थी। पुराना नियम बाइबिल के प्रथम 39 पुस्तक उसमें यीशु के जन्म से पहले हुई घटनाओं के कालक्रम का समावेश किया गया है। पौलुस अन्य जातियों में यानी कि गैर यहूदियों के बीच में सेवकाएं करने के लिए चुना गया प्रेरित। पत्रस यीशु के 12 चेलों में से एक। वाचा का देश यह शब्द भौगोलिक रीति से इसराइल को लागू होता है। परमेश्वर ने अब्राहम को इस देश को उसके संतानों को देने का वचन दिया था। इसराइलियों ने उस देश पर अधिकार प्राप्त किया उससे पहले वो देश कनान देश से जाना जाता था। अंधकार के हाकिम परमेश्वर ने जगत और मानवीय परिवार के लिए की गई योजनाओं के विरोध करने वाले हरेक अलौकिक व्यक्ति। ज्यादा जानकारी के लिए अलौकिक बातों के बारे में उपयोग में लिए जाने वाले शब्दों का सारांश देखो। पुनरुत्थान एक मरने के बाद मृत्यु पर विजय पाने का कार्य। दो नए नियम में यीशु को क्रूस पर टांग कर मार डाला गया। उसके बाद यीशु मृत्यु में से सजीवन हुए, वो घटना। और नई पृथ्वी में हरेक विश्वासी अनंत जीवन पाने के लिए सजीवन होंगे, यह घटना। उद्धार, जो कोई व्यक्ति उसके पापों के द्वारा परमेश्वर से जो अलगता हुई उससे छूटने के लिए सुसमाचार पर विश्वास करता है, उस छुटकारे को उद्धार कहते हैं। उद्धार में सुसमाचार पर विश्वास करने से हमें हमारे पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उद्धार विश्वासी को परमेश्वर के परिवार में पुनः स्थापित करता है। सारा, अब्राहम की पत्नी, जिसे परमेश्वर ने अलौकिक रीति से गर्भवती होने के लिए शक्तिमान किया था। शैतान, अदन वाटिका में आदम और हव्वा को छलने वाले सर्प को दिया गया नाम। शैतान परमेश्वर ने सिर्जे हुए अलौकिक व्यक्तियों में से प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर से विद्रोह किया था। नए नियम में शैतान परमेश्वर का मुख्य शत्रु है। ज्यादा जानकारी के लिए अलौकिक बातों के बारे में उपयोग में लिए जाने वाले शब्दों का सारांश देखो। शाउल, इसराइल का प्रथम राजा। सर्प, अदनवाटिका में आदम और हव्वा का शत्रु। बाद में बाइबिल में उसे दुष्ट या तो शैतान कहा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए अलौकिक बातों के बारे में उपयोग में लिए जाने वाले शब्दों का सारांश देखो। पाप, परमेश्वर की धार्मिकता, नैतिकता और व्यवहार के मापदंडों के विरुद्ध किया जाने वाला विद्रोह का हरेक कार्य। सुलेमान, दाऊद के पुत्रों में से एक पुत्र। दाऊद की मृत्यु के बाद सुलेमान ने राज्य प्राप्त किया था। पुत्र, बाइबिल में पुत्र शब्द त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति को, यानी कि इंसान बने हुए यीशु को दर्शाता है। परमेश्वर के पुत्र, पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर की सेवा करने वाले या तो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने वाले अलौकिक व्यक्ति। ज्यादा जानकारी के लिए अलौकिक बातों के बारे में उपयोग में लिए जाने वाले शब्दों का सारांश देखो। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा के लिए उपयोग में लिए जाने वाले दूसरे शब्द। आत्मिक युद्ध, पाप और शत्रु बने हुए अलौकिक व्यक्ति परमेश्वर के जिस महान आदेश का विरोध करते हैं उनके साथ किया जाने वाला संघर्ष। ज्यादा जानकारी के लिए अलौकिक बातों के बारे में उपयोग में लिए जाने वाले शब्दों का सारांश देखो। अलौकिक, स्वाभाविक, भौतिक जगत और ब्रह्मांड के बाहर की बातों को बताने वाला शब्द। अलौकिक व्यक्ति, यह शब्द अशरीरी प्रकृति रखने वाले व्यक्तियों को दर्शाते हैं। 10 आज्ञाय, मिस्र की गुलामी में से निकलने के बाद इसराइल को दिए गए शुरुआत के 10 नियम। त्रिएकता, परमेश्वरत्व के 3 व्यक्ति। बाइबिल का सिद्धांत है कि परमेश्वर एक है, पर अनंत काल से वे 3 व्यक्तियों के तौर पर अस्तित्व रखते हैं। अलौकिक बातों के बारे में उपयोग में लिए जाने वाले शब्दों का सारांश। बाइबिल हमें आत्मिक जगत में रहने वाले व्यक्तियों के विषय में बताते हुए विविध शब्दों का प्रयोग करता है। कई बार मसीही संस्कृति में इन शब्दों को इकट्ठा किया जाता है और उससे बड़ी गड़बड़ी होती है। मैंने मेरे शिक्षात्मक पेशे में इन बातों के विषय में बहुत संशोधन किया है, और दूत, शैतान या अशुद्ध आत्माओं के विषय में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को मैंने नीचे बताए गए जो पुस्तक लिखे है उसे उसके क्रम के अनुसार पढ़ने की सिफारिश करता हूँ। अलौकिक, अदृश्य जगत के बारे में बाइबिल क्या सिखाता है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। द अनसीन रियल्म, रिकवरिंग द सुपरनेचुरल वर्ल्ड व्यू ऑफ द बाइबल। एंजल्स, व्हाट द बाइबल रियली सेज अबाउट गॉड्स हेवनली होस्ट। डीमंस, व्हाट द बाइबल रियली सेज अबाउट द पावर ऑफ डार्कनेस। प्रथम पुस्तक की रचना शिक्षात्मक तौर पर नहीं की गई है। उसके बाद जो 3 पुस्तक है उसे शिक्षात्मक रीति से बहुत सारी पाद टीका और जानकारी के साथ लिखे गए हैं। इन पुस्तकों में इस विषय को समर्थन देने वाले विद्वतापूर्ण स्रोतों में से बहुत सारी टिप्पणियां और संदर्भों को लिया गया है। वे बाइबिल की कहानी के विषय में हमारी प्रस्तुति में बताए गए अलौकिक जगत की समीक्षा या विवेचन करने के लिए उपयोगी होंगे। बाइबिल हमें सिखाता है कि एक अदृश्य जगत, यानी कि आत्मिक व्यक्तियों का एक जगत है। ये व्यक्ति शारीरिक रूप धारण कर सकते हैं, पर उनका खुद का शरीर नहीं है। आत्मिक जगत अलौकिक है, यानी कि भौतिक जगत से अलग स्वभाव या प्रकृति रखने वाला एक जगत है। परमेश्वर आत्मिक जगत के सभ्य है, पर उसके सृजनहार के तौर पर उसके मालिक भी हैं। सिर्फ परमेश्वर ही ऐसे है जिसकी रचना नहीं की गई है। उनका अस्तित्व अनंत काल से है। परमेश्वर ने जैसे इस जगत में हरेक प्राणियों की और मनुष्यों की रचना की है, वैसे ही आत्मिक जगत में रहने वाले सभी आत्मिक व्यक्तियों की भी रचना की है। बाइबिल आत्मिक जगत के सदस्यों के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग करता है। उदाहरण के तौर पर रोमियो 8:38, पहला पत्रस 3:22। मैंने इन पुस्तक में उनमें से कुछ के विषय में बताया है। उसमें से कुछ शब्द तो उनके कार्यों को बताते हैं, यानी कि वे आत्मिक व्यक्ति जो कार्य को करते हैं उस कार्य को दर्शाते हैं। दूत शब्द उसका एक उदाहरण है। इस शब्द का अर्थ है संदेशवाहक। नए नियम की यूनानी रोमी संस्कृति में दूत शब्द परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह न करने वाले स्वर्गीय सैन्य के हरेक सदस्य के लिए उपयोग में लिया जाता था। प्राचीन जगत में अशुद्ध आत्मा शब्द के अलग अलग अर्थ थे। फिर भी परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने वाले हरेक अलौकिक व्यक्ति के लिए अशुद्ध आत्मा शब्द उपयोग में लिया जाने लगा। परमेश्वर के पुत्र, यह शब्द पारिवारिक शब्द है जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर आत्मिक व्यक्तियों के पिता यानी सर्जनहार है। वैसे उस शब्द का अर्थ उससे थोड़ा ज्यादा है। सुपरनेचुरल, अलौकिक और द अनसीन रैल्म, ये दो पुस्तकों में मैंने इन शब्दों के विषय में चर्चा की है। परमेश्वर के पुत्र, यह शब्द तो परमेश्वर के उच्च कोटि के कर्मचारियों को दर्शाते हैं। यह शब्द तो प्राचीन जगत के राजा के संतानों को जिम्मेदारियों के साथ जो उच्च पदवियां प्राप्त होती थी उस भाषा से लिए गए शब्द हैं। परमेश्वर ने बाबिल के आगे जो न्याय किया था, तब परमेश्वर के पुत्रों को देशों के ऊपर अधिकार दिया गया था। यह कार्य तो जैसे दूत संदेशों को लेकर जाते हैं उससे ज्यादा महत्व का कार्य था। शुरुआत में आत्मिक जगत के हरेक सभ्य परमेश्वर से ईमानदार थे, पर परिस्थिति बदल गई। हमने इस पुस्तक में पढ़ा कि परमेश्वर ने आत्मिक जगत की रचना की, उसके बाद आत्मिक जगत के सदस्यों को उनके कुछ गुण दिए। उन गुणों में से एक गुण तो स्वतंत्र इच्छा थी। आत्मिक जगत के कुछ सदस्यों ने उनकी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करके परमेश्वर की इच्छाओं और परमेश्वर के मानवीय परिवार के विरुद्ध विद्रोह किया। परमेश्वर के विरुद्ध और उनके लोगों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले आत्मिक व्यक्ति सामूहिक रूप से अंधकार के हाकिम हैं। वैसे अपना एक मानवीय परिवार हो, ऐसी परमेश्वर की इच्छा की बात में परमेश्वर के आत्मिक शत्रुओं को अलग रीति से बताया गया है। बाइबिल 3 विद्रोह के विषय में वर्णन करता है। प्रथम विद्रोह तो अदन वाटिका में हुआ था। परमेश्वर के जगत के सदस्यों में से एक व्यक्ति मानवीय परिवार होने की परमेश्वर की इच्छा को नुकसान पहुंचाना चाहता था। बाइबिल की बात में हम देखते हैं कि वो व्यक्ति सर्प के रूप में हव्वा के पास आया और उससे छल किया। उसके बाद बाइबिल में वो मूल विद्रोह करने वाले व्यक्ति को शैतान यानी विरोधी और दुष्ट यानी निंदा करने वाला व्यक्ति ऐसा नाम दिया गया है। उसके बाद बाइबिल की बात में हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गीय पुत्रों ने भी विद्रोह किया। उन्होंने आत्मिक और भौतिक जगत की सीमा रेखा को लांग दिया। यहूदा की छोटी किताब उनके पापों का वर्णन करते बताती है कि उन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा। अंत में कलिसिया की संस्कृति परमेश्वर के पुत्र जिन्होंने विद्रोह किया था उनकी दुष्टता को बताने के लिए उन्हें पतित हुए स्वर्गदूत या तो पवित्रता में से पतित हुए या तो अशुद्ध आत्मा कहती है। फिर भी पुराने नियम में उत्पत्ति 6:1-4 में दूतों या अशुद्ध आत्मा शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। आखिर में बाबेल की मीनार के आगे जो घटना घटी, उसके बाद जिनको देशों के ऊपर अधिकार दिया गया था वे परमेश्वर के पुत्र, उनको जो कार्य सौंपा गया था उसमें भ्रष्ट हुए। भजन संहिता 82 में उनके न्याय का वर्णन किया गया है। यह क्षेत्रीय प्रधान तो दानियल ने उसके पुस्तक के 10वें अध्याय में और पौलुस ने इफिसियों की पत्री 6:11-12 में बताए गए प्रधान, अधिकारी, हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेना का मूल है। यह सब शब्द भौगोलिक अधिकार के विषय में बताते हैं। और इससे बाइबिल की कहानी में बताई गई बाबिल की घटना के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई थी उसका वर्णन करते हैं।